ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ತೀರ ಯಮುನಾ ತೀರವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ जय राधा वृंदावन बिहारे राधा वृंदावन बिहारे राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का हम इस सुबह की भागवतम कक्षा में स्वागत करते हैं और आज हम भागवतम के पांचवें स्कंद के ऊपर उसमें 17वां अध्याय है और श्लोक क्रमांक 17, 18 और 19 इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये अध्याय का शीर्षक है गंगा का अवतरण, किस प्रकार से गंगा देवी इस भौतिक जगत में या फिर इस भारतवर्ष में प्रकट हुई, उसकी चर्चा इस अध्याय में पिछले कुछ दिनों से हो रही है। तो उसमें अभी हम पहुँचे हैं 17, 18 और 19वें श्लोक के पास, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रथमतः मैं ये 2 श्लोक उच्चारण करता हूँ, उसके बाद तीसरा श्लोक जो है 19वां वो बोर्ड पे है, 17वां है ना। अच्छा पहला ही है क्या? अच्छा पहला ही। श्री भगवान उवाच ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यनाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। श्री भगवान उवाच ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति श्री भगवान उवाच। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। श्री भगवान उवाच। ओम नमो भगवते महापुरुषाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। श्री भगवान उवाच। ओम नमो भगवते महापुरुषाय अव्यक्ताय श्री भगवान उवाच। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संज्ञानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। हरे कृष्णा। तो इसका तात्पर्य, सर्वाधिक शक्तिमान शिव कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं, आप अनंत होकर भी अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। 18वां और 19वें श्लोक का मैं अर्थ पढ़ता हूँ। हे प्रभो, आप ही एकमात्र आराध्य व्यक्ति है, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपके चरण कमल भक्तों के लिए एकमात्र आश्रय है। आप अपने भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभो, आप अपने भक्तों को भौतिक अस्तित्व संसार के चंगुल से मुक्त कराने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। 19वां श्लोक। हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते, अतः जब हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो हम उनसे आकर्षित या विकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, किंतु परमेश्वर इस प्रकार कभी भी प्रभावित नहीं होते। यद्यपि इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के हेतु वे इस पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु इससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। अतः वह जो अपने इंद्रिय के वेग पर विजय प्राप्त अतः वह जो अपने इंद्रिय वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री भगवान के शरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, तभी वह विजयी होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान सदा अकल्पनीय शक्तियों से युक्त रहते हैं। यद्यपि उनके द्वारा भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात करते ही सृष्टि हो जाती है, किंतु वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे उनकी दिव्य स्थिति के कारण भौतिक प्रकृति के गुण उनको प्रभावित नहीं कर सकते। इसीलिए श्री भगवान दिव्य कहलाते हैं। फलतः जो भी भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बचना चाहता है, उसे उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार जो गंगा माता है ये भौतिक जगत में प्रकट हुई, तो गंगा नदी के उद्गम तथा इसके इलावृत वर्ष में और इसके चारों ओर बहने का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्व्यूह विस्तार के अंश संकर्षण के प्रति शिवजी द्वारा ये स्तुति अभी आज ही ये श्लोक से स्टार्ट हुई है। तो कैसे गंगा नदी इस भारतवर्ष में आई, तो एक बार भगवान श्री विष्णु बलि महाराज के पास पहुँचे, और ये बलि महाराज के पास पहुँचने के बाद बलि महाराज जो है उनको बोलते कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया है तो आप कुछ हमें मांगिए। तो उस समय बलि महाराज कहते हैं कि मुझे आप सिर्फ 3 पग भूमि प्रदान कीजिए। तो उस समय हम देखते हैं किस प्रकार से वामन देव का अवतार जो है, किस प्रकार से वामन देव जो है ब्राह्मण होते हुए भी, भगवान होते हुए भी नम्रता से उनके पास याचना करते हैं कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे बस 3 पग भूमि दीजिए। वो बोलता है, वो गर्व से बोलता है कि मैं तो पूरे मतलब भारतवर्ष का राजा हूँ, पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, और आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं। देवता भी मुझसे मतलब संतुष्ट हो सकते, इतना मेरे पास धन है प्रचुर मात्रा में, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन आप तो 3 पग भूमि मांग रहे हैं। तो उस समय फिर भगवान जो है बोलते, आप इतनी ही मेरी इच्छा पूरी करो, इसमें मैं संतुष्ट हूँ। तो उस प्रकार से जब भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए राजी होता है, फिर शुक्राचार्य उनके गुरु उनको मना करते हैं कि ये साक्षात विष्णु है, इनको मत दो। लेकिन उस समय वो कहते हैं कि साक्षात विष्णु अगर मेरे पास कुछ मांगने के लिए आ रहे तो मुझे उनको ऐसे नहीं भेजना चाहिए खाली हाथ। तो उस प्रकार से जो बलि महाराज है राक्षस कुल में होते हुए भी है ना भक्ति का अनुगमन करते हैं, इसीलिए वो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को मतलब जो मांग रहे वो देने का प्रयास करते हैं। तो भगवान मतलब पूरी तरह वो शरणागत हो गए उस समय। तो उस प्रकार से भगवान पहले पग में पूरे उनका डाया जो पैर है वो पैर से पूरे ऊपर के पूरे मतलब लोगों को व्याप्त करते हैं, दूसरे पैर से नीचे के सभी लोगों को व्याप्त करते हैं, और जब ऊपर पैर जाता है भगवान का तो उस समय भगवान के दाएं नाखून से और अंगूठे के नाखून से ये जो ब्रह्मांड है उसको, उसका जो आवरण है उसको भेद होके फिर वहाँ से फिर वो कारणोदक्षाय समुद्र से गंगा के मतलब समुद्र से कुछ जल जो है वो नीचे आते हैं, लेकिन वो भगवान के चरण को स्पर्श करके नीचे आते हैं। तो इसीलिए वो जो जल है उसको विष्णुपदी कहा जाता है, तो विष्णु के पद को स्पर्श होते हुए। और वो जब भगवान के चरण को जल स्पर्श होता है तो जल लालिमा युक्त है ना, भगवान के चरण में लालिमा है, कोमलता है, और लाल रंग है, पिंक कलर का जो रंग है भगवान के चरण कमल का, तो रंग वो जो गंगा नदी है वो धारण करती। तो उस प्रकार से वो जो जल है जब ध्रुव लोक में आता है, क्योंकि ध्रुव महाराज ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी 5 साल की उम्र में, कोई सोच भी नहीं सकता तो उस समय, कुछ हमें बुद्धि भी नहीं, अभी भी नहीं है। तो उस प्रकार से पहले वो ध्रुव लोक में आती है, ध्रुव महाराज भी वो गंगा का जल अपने सिर पर धारण करते हैं, फिर वहाँ से जो सप्तर्षि है वहाँ पे भी जाती है सप्तर्षि के लोक में, फिर वहाँ से अलग अलग लोकों में से जाते हुए फिर वो अंततः इस भौतिक जगत में पृथ्वी पर आती है। तो ये जो अलग अलग 9 वर्षों का वर्णन है तो ये इलाव्रत वर्ष 1 है, और हमारा जो हम जहाँ पे रहते हैं भारत वर्ष है। तो ऐसे यहाँ पे वो आती है, तो पहले जो भारत वर्ष में वो पहुँचती है यहाँ, यह लवण सागर के दक्षिण की ओर मतलब 4 दिशाओं में फिर वो बहने लगती है। तो उसमें से एक जो दिशा है उसकी वो भारत वर्ष में आती है। तो भारत वर्ष नामक जो भूभाग है वो कर्म क्षेत्र है, बाकी के जो अन्य 8 वर्ष है उन पुरुषों के निमित्त है जो स्वर्गीय आनंद उठाना चाहते हैं। तो ये स्वर्ग के समान ही है। तो वहाँ के जो लोग है 10,000 साल उनकी आयु रहती है, और 10,000 साल के आयु में वो मतलब पूरे जीवन में नवयौवन रहते हैं और इतना आनंद उठाते हैं कि इवन उनको बच्चे भी नहीं होते, मतलब मृत्यु के बस 1 साल पहले वो अपने बच्चों को जन्म देती है वहाँ की स्त्रियाँ, बाकी के जो 8 वर्ष है अलग अलग। तो इस प्रकार से उनका वर्णन है। तो ये भौतिक ऐश्वर्य होने के कारण वहाँ के लोग भक्ति नहीं कर पाते। तो ये गंगा नदी जो है वहाँ से फिर ये भारतवर्ष में जब आती है तो अलग अलग जो जगह है उनको पवित्र करती है। तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद की कृपा से मतलब ये गंगा को हम समझ पा रहे हैं कि कितनी इसकी महानता है। साक्षात भगवान के चरण से आया हुआ ये अमृत है। तो इसमें जस्ट स्नान करने मात्र से हम कर नहीं सकते, उतने पाप धुल जाते हैं, उतने पाप नष्ट हो सकते। तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। तो इस प्रकार से ये गंगा का किस प्रकार अवतरण हुआ और ये करने के लिए आगे चल के भगीरथ महाराज, तो इसके कारण ये गंगा नदी का और दूसरा नाम है भगीरथी, दूसरा नाम है जाह्नवी भी करते हैं। तो जाह्नू नाम के जो ऋषि है उन्होंने उनको नवद्वीप में रोका था, तो उनको डिस्टर्ब किया था ध्यान में, तो उस प्रकार से वो जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है। तो इस प्रकार के ये गंगा का अवतरण हुआ और ये शिवजी का जो जहाँ पे जो शिवजी रहते हैं, इसके पहले के श्लोक में वर्णन आता है कि इलाव्रत में, तो वहां पे शिवजी एकमात्र पुरुष है और जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। भगवान शिव की जो पत्नी है दुर्गा देवी, तो वहां पे कोई भी पुरुष को प्रवेश करने नहीं देती। तो उसमें बताते हैं कि 10 अब्ज स्त्रियां है ना दुर्गा देवी के साथ शिवजी के वहाँ पे सेवा करती है। तो वही शिवजी है इतने महान, वो अभी यहाँ पे भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो किस प्रकार भगवान महान है और हमें उनकी शरणागति स्वीकारनी चाहिए, तभी हम जीवन जो है हमारा जीवन सफल हो सकते। कल ही आदरणीय हेमरूप चैतन्य प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया किस तरह हरिहर भेद है, तो हमें ये कैसे समझना है। तो इसके ऊपर तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस शिवजी इतने महान है। वैष्णवा नाम यथा शंभो, निम्न गा नाम यथा गंगा, जिस प्रकार सभी नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, तो उसी प्रकार सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ जो वैष्णव है वो शिवजी है। तो वो शिवजी खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं किसका भजन करता हूँ या फिर मैं किसका भक्त हूँ। तो बोल रहे हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। तो भगवान संकर्षण के रूप में वो भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो संकर्षण जो है किस प्रकार से ये अवतार होता है, तो पहले कृष्ण से बलराम जी आते हैं, फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह आता है, ये चतुर्व्यूह से नारायण आते हैं, फिर ये नारायण से फिर से और एक चतुर्व्यूह आता है, और उसमें जो चौथा है वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो ये संकर्षण जो भगवान का रूप है, ये रूप एक्चुअली थोड़ा सा तमोगुण युक्त है। वैसे तो भगवान तमोगुण हो नहीं सकते, शिवजी भी तमोगुण में दिखते हैं लेकिन तमोगुण में नहीं है दिखने के लिए, क्योंकि वो कर्म वैसा उनको करना है इस भौतिक प्रकरण में। सृष्टि का विनाश करने के लिए शिवजी का मेन जो कार्य है सौंपा गया है, तो उसके लिए शिवजी जो है वो तमोगुण को धारण करते, लेकिन वैसे तो सदैव विशुद्ध सत्व गुण में ही रहते। तो ऐसे भागवत में बहुत सारी चर्चाएं हुई है। तो वही शिवजी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप दिव्य गुणों के आगार है और अनंत होकर भी अभक्तों के लिए प्रकट है, अप्रकट है। तो मुझे अभी 2-4 दिन पहले मैं एक गाँव से इधर पालघर आया, और पालघर आने के बाद सुबह स्टेशन पहुंचा, मुझे लगा कि कुछ नारियल पानी लेके जाते, टिफिन मतलब वहां से आ रहा था, भगवान को भोग लगाएंगे और नारियल पानी पी के अपना दोपहर तक हो जाएगा जीवन दिनचर्या। तो मैं नारियल पानी लेने के पास वो व्यक्ति के पास गया, उसे नारियल खरीदा, और फिर वो बोला कहाँ से आए आप? गोवर्धन इको विलेज में धोती कुर्ता पे था। तो गोवर्धन इको विलेज, गोवर्धन इको विलेज, उसके ऐसा आश्चर्य से बोला। तो मैं बोला अरे आप कभी आइए ना उधर, दिन में आप इधर इतना नारियल बेचते, कभी दर्शन के लिए आइए। तो जैसे मैं बोला, बोले गोवर्धन इको विलेज, इको विलेज मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूँ आप सब लोग ढोंगी है। मतलब इतना गुस्सा किया उसने कि मैं पूरा डर गया, हिल गया। मतलब मैं बोला महाराज जी ने कितना तपश्चर्या करके, प्रभुपाद के कितने कृपा वर्षाओं के कारण ये गोवर्धन इको विलेज प्रकट हुआ है। मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का मेरा ये सबसे मतलब फेवरेट स्थान है, और ये व्यक्ति बोल रहा है कि अरे मुझे उधर पूछो ही मत आप उधर आने के लिए। मैं बोला क्यों आपको उसके इतना द्वेष है इस गोवर्धन विलेज के प्रति? तो नहीं नहीं बोले, पूरे दुनिया में ऐसे ही साधु लोग हैं, वो फेमस करने लगे आप खुद अपने आप को और बस पैसा लूट रहे ऐसा वैसा बोलने लगा। तो मैं उसको बहुत तरीके से समझाने लगा, अब ये एक साधु के पास आपको गलत अनुभव होगा तो आप सभी को ऐसा दोष नहीं दे सकते। वहां आकर तो देखो कितने तीन तीन चार चार हजार लोगों को हम प्रसाद बांट रहे, उधर खाना मिलता है क्या? बोले मैं बोला तीन तीन हजार लोगों को फ्री में प्रसाद बांटते, कितने भी लोग आने दो, आप आओ, कुछ पैसा नहीं कुछ नहीं लग रहा है। बोले एंट्री फीस लगेगा। एंट्री फीस नहीं है बोला मैं, अच्छा इतना फ्री में? नहीं नहीं बोला, फिर भी नहीं आऊंगा, आने जाने के लिए तो पैसा लगेगा ना मुझे। मैं बोला वो तो हम नहीं दे सकते आप, अभी उतना कैसे कर सकते। तो इस प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य भगवान हर तरह से प्रकट करते हैं। भक्त भी बाहर के जो अभक्त लोग हैं उनको भगवान का रूप प्रकट करने के लिए, उनकी कृपा प्रदान करने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं। लेकिन जो अभक्त लोग होते हैं अगर उनके मन में वो कृपा स्वीकार करने के लिए वो एक पग भी आगे डालने के लिए तैयार नहीं है, पूरा रास्ता ही उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो चांस ही नहीं है कि वो कभी वो भगवान की कृपा को देख सकते हैं या फिर वो भगवान के जो अनंत गुणों के आगार है, भगवान दिव्य गुणों के सागर है, उसमें से एक बूंद वो पूरे जीवन भर कभी नहीं ले सकते और इस भौतिक जगत में ऐसे दुख में खितपत पड़े रहते। तो मैं बहुत वो गुस्सा किया मुझसे, मैं लास्ट में बस ये प्रार्थना किया उस कि भगवान करे आपकी ये जो बुद्धि है कभी ना कभी बदले बस ऐसा प्रार्थना करके मैं फिर वहां से निकल गया, क्योंकि उससे बात करने का कुछ सवाल ही नहीं आ रहा था। बोले क्यों बनाया फिर आपने वो गोवर्धन कॉलेज? इधर मंदिर नहीं है क्या पालघर में छोटा सा? इसमें भक्ति करो, इधर ही रहो ना आप, इधर राम मंदिर है, इधर भी पूजा करो। मैं बोला आपने दुकान इधर ही क्यों मांडा है ये नारियल का? वो दूसरे बाहर जगह पे लगाओ ना। तो ये जो गोवर्धन कॉलेज है, किस प्रकार से बाहर के लोग जो दुख में तड़प रहे उनको एक सुकून शांति का अनुभव हो इसलिए है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार से वो अनुभव मुझे वहां पे उस दिन हुआ। और दूसरे श्लोक में शिव जी कह रहे हैं यहाँ पे कि हे प्रभु आप ही एकमात्र आराध्य व्यक्ति है। तो भगवान ही एकमात्र आराध्य व्यक्ति है, क्योंकि आप समस्त जो छह ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्यों के आप स्वामी है, आपके चरण कमल जो है एकमात्र ये आश्रय है। तो हम देखते हैं कि भगवान अनंत होकर भी अभक्तों के लिए सदैव अप्रकट रहते। तो प्रहलाद महाराज जो है भगवान को हर जगह पे देख पा रहे थे, लेकिन वही हिरण्यकश्यपु जो है वो भगवान को कहीं पर भी देख नहीं पा रहा था। हालांकि भगवान को मारने के लिए हर तरह से ढूंढने का प्रयास कर रहा था, कहाँ मिलेंगे मैं उनको मार दूंगा। और प्रहलाद महाराज है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनको देख नहीं पा रहे। तो आप में है, मुझ में है ना, इस खंभे में भी है, हर जगह वो देख पा रहे थे। और मैं ये सोच रहा था कि हमारे लिए भी वैसी स्थिति है कि गुरु की कृपा से वैष्णव की कृपा से हमारे लिए मतलब भगवान प्रस्तुत है, सामने दर्शन है, प्रभुपाद जी है, विग्रह विग्रह और भगवान, वैसे भौतिक जगत में भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी विग्रह के रूप में भगवान स्पेशल कृपा देके यहाँ पे प्रकट हुए। तो फिर भी मेरे मन में विग्रह के प्रति उतना आकर्षण नहीं है, तो इसीलिए प्रकट होते हुए भी मेरे लिए अप्रकट ही है। तो इस प्रकार से मुझे वो आलोचना हो रही थी कि सही बात है, वो व्यक्ति के लिए नहीं, उस व्यक्ति से तो मैं और ज़्यादा गिरा हूँ एक्चुअली उसको तो अप्रकट है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे लिए भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, वैष्णव के चरणों में गिरना पड़ेगा, तभी भगवान या भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये जो शास्त्र है मेरे लिए प्रकट हो सकते हैं। नहीं, क्योंकि वो गौरांग दर्शन प्रभु उस दिन बता रहे थे कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, पूरे ब्रह्मांड में अगर ये सौभाग्य लोगों की, जिनका सौभाग्य है ऐसे लोगों की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें हमारा नाम है। क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट हमें ये शास्त्र के प्रति एक्सेस दिया गया है, वैष्णव के प्रति डायरेक्ट एक्सेस दिया गया है, नाम के प्रति डायरेक्ट एक्सेस दिया गया है, डायरेक्ट हम नाम ले सकते हैं, नाम की पूरी महिमा हमारे सामने उजागर है। 99% अपनी जो डिवोशनल प्रगति है वो भगवान के नाम से होती है, प्रभुपाद बोलते हैं। तो ये सब कुछ सीक्रेट हमारे सामने प्रस्तुत है, फिर भी हमारे सामने प्रकट होते हुए भी वो अप्रकट ही है, क्योंकि हम उसका आनंद या फिर वो स्तर तक नहीं जा पा रहे, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे बाहरी कारण हैं। जिनको हम छोड़ नहीं रहे। तो ये मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब कि मेरे जीवन में कुछ इससे बदलाव आए। तो यहाँ पे जो भक्त मैं देखता हूँ कि मतलब बहुत उच्च स्तर पे, ये भी अनुभव मुझे अभी कुछ दिनों से हो रहा है, लेकिन हम उनका फायदा नहीं उठाते। तो दूसरा जो पॉइंट शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके चरण कमल जो है भक्तों के लिए एकमात्र आश्रय है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक जो भजन बोलते हैं, एको न भुजिनु प्रभु तुमार चरण अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखन। तो ये जो भौतिक जग है, भौतिक जो दुनिया है, पूरे दुख से भरी है, और एकमात्र भगवान आपके जो चरण कमल है वही मेरा आश्रय स्थान है जो मुझे दुखों से दूर कर सकते। उसे अध्याय में वो बोलते हैं कि जो लक्ष्मी है वही भगवान के चरणों की वो आराधना करती है, जो शिव जी है वही चरण पाके वो शिवत्व प्राप्त करते हैं, दिव्य गुण प्राप्त करते हैं, और ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा ये चरण को प्राप्त करके कृतार्थ, उनका जीवन कृतार्थ होता है, और नारद मुनि जो है वो चरण सदैव अपने हृदय में धारण करते हैं, और वो धारण करने के कारण पूरे तीनों ब्रह्मांडों में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में वो कहीं पर भी घूमते हैं सभी अभक्तों का, भक्तों का कल्याण करने हेतु। तो ये भक्तों के, भगवान के चरणों की महिमा है। तो जन्माष्टमी के उस समय अपने दामोदर प्रभु जी वो कुछ पॉइंट्स बता रहे थे कि किस प्रकार भगवान के जो चरण है ये, इनका हमें सदैव आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला पॉइंट प्रभु जी ने बताया था कि ऑस्पिशियस, तो भगवान के चरण जो है इतने ऑस्पिशियस है कि इससे ऑस्पिशियस कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें हर दिन ये भगवान के दिव्य ऑस्पिशियस चरण का दर्शन हो पाता है। फिर दूसरा पॉइंट प्रभु जी ने बताया था चरणों के बारे में कि यह हाईएस्ट बेनेडिक्शन है, इससे बड़ा कोई बेनेडिक्शन नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि वो डिजायर ट्री है, सभी हमारे इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान के चरण जो है वह तीर्थ क्षेत्र है, मतलब इससे बड़ा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के चरण का दर्शन करेंगे तो हमारे सभी तीर्थ क्षेत्र उसी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस प्रकार से भगवान के चरण जो है वो तीर्थ क्षेत्र है, और प्रभु जी ने इसमें बताया था कि भगवान तीर्थ क्षेत्र भी हम जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसा एक भी कण नहीं है वृंदावन में, भूमि का एक भी 84 कोस जो भूमि है उसमें एक भी कण नहीं कि जहाँ पे भगवान के चरण का स्पर्श नहीं हुआ। तो उस प्रकार से भगवान सभी भूमि को स्पर्श करते। तो उसमें और भी कहा जाता है कि अरे हम अगर वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे सोचेंगे अरे वृंदावन से जो मतलब अलग अलग वन है वो कभी कभी 50-60 किलोमीटर दूर है। अभी कृष्ण सुबह गाय चराने गए और शाम को वापस भी आए, तो 50-60 किलोमीटर जाना ही दिन भर में संभव नहीं है, तो वापस कैसे आए, उधर लीला कैसे किए। तो जो भूमि है, भूदेवी है, अपने आप को सिकुड़ लेती। तो मेरा मतलब जितना भगवान स्पर्श कर पाएंगे उतना वो सिकुड़ जाती, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान मुझे स्पर्श कर जाए। तो उस प्रकार से जो भूमि है वो छोटी होती। तो उस प्रकार से भगवान जहाँ भी धाम में भगवान अवतार लेते हैं, जहाँ भी लीला करते हैं, तो पूरे भूमि को भगवान का स्पर्श रहता है, और वही भूमि पे हम जाते हैं। तो साक्षात बलराम जी वो जो धाम है वो बलराम जी का शरीर है, कृष्ण से अभिन्न है। तो हमें वो स्पर्श करने का सौभाग्य वहाँ पे प्रदान होता है, तो इसीलिए हम तीर्थ यात्रा या तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं। तो उस प्रकार से भगवान का जो ये चरण है तो ये तीर्थ क्षेत्र से कुछ कम नहीं है, साक्षात तीर्थ क्षेत्र है। और भगवान के चरण हमें प्रोटेक्शन देते हैं। एक बार अगर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भगवान के चरण का आश्रय लेगा तो बाद में उसे कभी किसी व्यक्ति की, किसी भी भौतिक वस्तु की शरणागत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस प्रकार से हमें भगवान के चरण पे पूरी तरह आश्रित रहना होगा। तो प्रभु जी भी बोल रहे थे कि उस दिन मतलब किसी व्यक्ति ने मन में भी ऐसा सोच लिया है ना, तो उसके तुरंत बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाते। ऐसा कोई बैंक नहीं है, मतलब जस्ट मन में सोच लिया मैं बैंक में 10 लाख डिपॉजिट करता हूँ तुरंत उसका हमको बेनिफिट मिलना चालू हो जाए। लेकिन भगवान के बारे में भक्तिमय सेवा में हम देखते हैं मन में सोच लिया तो भी उसका बेनिफिट्स मिलना हमें स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हमें सदैव भगवान के चरण कमलों में हमारे जो मन है, हमारी जो इच्छा है, हमारी रति बनाए रखनी चाहिए। तो पांचवा ये तात्पर्य में से पॉइंट मैं पढ़ रहा था कि भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान जो है विविध रूप धारण करते। और यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ रही कि भगवान के चरण कमल के बारे में, किस प्रकार भगवान के चरण कमल दिव्य है। तो विट्ठल की कथा आती है, तो हम देखते हैं कि विट्ठल जो आषाढ़ी एकादशी रहती है तो लाखों लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जाते, 10 लाख 15 लाख लोग, वो भी एक एक महीना 15-15 दिन चल के जाते। तो उसी कुछ साल पहले एक वेश्या स्त्री थी, जो स्त्री पंडरपुर से कुछ अंतर पे रहती थी और वो सोचती थी कि मैं अपने सौंदर्य से कितने युवकों को, पुरुषों को आकर्षित करती हूँ। इतने लाखों लोग ये विट्ठल का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या ये भगवान मुझसे भी ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं क्या, मुझसे भी ज़्यादा कोमल हो सकते हैं क्या। तो उस प्रकार से वो जो वेश्या स्त्री थी उसके मन में विचार आता है और उसको लगता है अगर लोग इतने जा रहे तो कुछ तो उधर होगा, तो मैं भी देख के आती हूँ क्या भगवान वाकई उतने मुझसे ही ज़्यादा कोमल हो सकते हैं क्या। तो उस प्रकार से वो स्त्री वो आषाढ़ी में जाती है, फिर 2-3 दिन का लाइन खड़ा रह के वहाँ पे वो पहुँचती है। तो जैसे विट्ठल के पास पहुँचती है तो वो सोचती है कि मैं स्पर्श करके देखती हूँ, क्योंकि अभी ऊपर से तो ये बहुत कठिन लग रहा है, तो स्पर्श करके देखती हूँ कितने मुलायम हो सकते हैं। तो जैसे वो अपना राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है भगवान के लेफ्ट फीट में डालती है, ऐसा स्पर्श करके देखने लगती है, तो अभी भी हम देखते हैं कि विट्ठल का जो लेफ्ट फीट है तो उसमें एक होल हुआ है। तो अभी भी हम देखते हैं कि भगवान के जो चरण कमल है इतने मुलायम है। तो उस प्रकार से उसको फिर एहसास होता है कि नहीं नहीं भगवान वाकई बहुत दिव्य है। तो उस प्रकार से ये भगवान के चरण कमल की एक छोटी सी कथा। तो भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान जो है विविध रूप धारण करते हैं, है ना, नरसिंह है, वामन है, ऐसे अलग अलग रूप धारण करके भगवान जो है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही वो रूप धारण करते। तो राक्षसों को मारने के लिए उनको ऐसे अलग से अवतार धारण करने की जरूरत नहीं, भगवान के बस इच्छा मात्र से ये पूरा सृष्टि का निर्माण करते समय भी भगवान को ऐसा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है सृष्टि निर्माण की, मतलब इच्छा करने से पहले वो प्रकट हो जाती, मतलब रंच मात्र एक इच्छा आने से पहले वो प्रकट होने हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। तो ये राक्षसों को मारने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए ये तो बाह्य कारण है, लेकिन अंतर्गत कारण जो है वो अपने जो भक्त है, अंतर्गत पार्षद है, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, और भगवान भी खुद आनंद लेते अपने भक्तों के साथ, तो इसलिए भगवान जो है भौतिक धरातल पे प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों को इस भौतिक जगत से छुड़ाते हैं, जो भी उनके शरण में आता है उनको ये माया के चंगुल से छुड़ाते हैं और उनको आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति करवाते हैं। लेकिन जो अभक्त लोग रहते हैं उनको इधर ही बस घुमाते रहते, ये माया के चंगुल में उनको मतलब बाहर आने का चांस ही नहीं है, वो किसी भी प्रकार से वो माया की इस चंगुल से बाहर नहीं आ सकते। तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरी जो माया है बहुत ही दुस्तर है, जो भी मेरे शरण में आता है वही इस माया को पार कर सकता, मामे वह प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो जब तक कोई मुझे शरण नहीं आता है तब तक ये माया के चंगुल से कोई बच नहीं सकता। तो इसीलिए हमें किसी भी प्रकार भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें ये माया के चंगुल से छोड़ सकते। तो शिव जी ये 18वें अध्याय के अंतिम में कहते हैं कि हे भगवान कृपया मुझे आपके नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। तो ऑलरेडी शिव जी नित्य दास ही है, भगवान की सदैव सेवा में व्यस्त रहते हैं, फिर भी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे नित्य दास के रूप में स्वीकार कीजिए। तो अभी हमें बार बार ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ ऐसी बार बार प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी नित्य दास है, है ना। लेकिन जब भी कुछ थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो हमें पता चलता है ना, हम तुरंत भगवान को भूल जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा हमें अनुभव होता है कि किस प्रकार हम भगवान को भूलते रहते। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को एक बार पंचांग्री प्रभु ऐसे गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, तो ट्रैवलिंग करते समय वो महाराज जी से बोलते हैं कि महाराज जी हमें एवरी डे वी हैव टू वेरी केयरफुल फॉर चॉइस, हर दिन हमें अपनी चॉइस के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए हर दिन। तो महाराज बोलते हैं नो, नॉट एवरी डे वी हैव टू केयरफुल फॉर आवर चॉइस एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकंड में हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि कब माया आएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारी चॉइस कब बदल जाएगी। हम भक्ति में रहते हुए भी कब हमारी चॉइस पलटी खाती है हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस प्रकार से महाराज जी बोलते हैं कि हमें एवरी सेकंड हर सेकंड में सतर्क रहना चाहिए हमारी चॉइस के प्रति। चॉइस को क्या बोलेंगे भैया, हाँ चुनाव। तो हमारी जो चॉइस चुनाव है तो किस प्रकार से हमें हर समय भगवान का चुनाव करना है, हर समय भक्तों का चुनाव करना है, अभक्तों को त्याग देना है ना। तो ये बहुत बड़ी मतलब इतना आसान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे शिव जी आगे के श्लोक में कह रहे कि हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते हैं, भौतिक वस्तु को और विषयों को देखकर तुरंत आकर्षित और विकर्षित हुए बिना हम नहीं रह सकते। तो साक्षात शिव जी ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि कब हम आकर्षित होते हैं विकर्षित होते हैं, तो ये हमारे बस की बात नहीं। तो इसीलिए हमें सदैव भगवान की शरणागति लेनी है, सदैव भगवान के प्रति हमारे मन को आसक्त रखना है, भक्तों के प्रति आसक्त रखना है, तभी ये संभव हो पाएगा। तो एक बार चतुष्कुमार जो है, ये चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि पिताजी हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारा मन विषयों में घुस जाता है और कब विषय मन में घुस जाते हैं। तो ये डिफरेंस करना ही समझ में नहीं आ रहा, मन विषय में घुस रहा है या विषय मन में घुस रहा है, तो इसका थोड़ा विश्लेषण दीजिए कि कैसे ये कैसे काम करता है। तो उस समय ब्रह्मा जी बोलते, अरे तुम तो बहुत ही ज्ञानी बन गए हो, अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कब मेरे मन में विषय घुस जाते हैं और कब मन विषय में घुस जाता है। तो हमें भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, चलो हम पांचों जन मिलके जाएंगे भगवान के पास। तो भगवान बोलते चिंता मत करो, क्योंकि ये मन, ये भौतिक प्रकृति में जो भी जीव आएगा तो इस प्रकार से वो एंटैंगल है कि वो समझ में ही नहीं आएगा किस प्रकार हम माया में चले जाते हैं और माया हमारे अंदर चली जाती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो उस दिन कौन से भागवतम क्लास में मैं सुन रहा था एक प्रभु जी, मतलब कभी कभी हम भक्ति के एकदम इवन भाव स्तर पे पहुंचने वाले हो उस समय में भी माया घुस सकती है। मतलब माया देवी अपना एक ऐसा तिनका भी नहीं छोड़ती है चेक करने का। तो उस प्रकार से वो हर समय हमें चेक करेंगे, भाव स्तर पे भी चेक करेंगे। तो हम भरत महाराज का उदाहरण देखते हैं भागवतम में, एकदम हाईएस्ट लेवल पे सब कुछ त्याग कर दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अंत में बस उनके हृदय में करुणा है एक जीव के प्रति। तो भगवान के प्रति करुणा छोड़ के वो जीव के प्रति आ गए, तो तुरंत भगवान से थोड़े विमुख हो गए। वो भी ठीक है, प्रभु जी आगे बता रहे थे कि सभी जीवों के प्रति करुणा होना ये साधु का लक्षण है, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना कि मैं ये करुणा का स्रोत हूँ, है ना, मैं ही इसको बचा सकता हूँ, तो ये डिफिकल्ट हो सकता। तो ये माया उसके थ्रू भी हमारे अंदर घुस सकती है और हमारे पतन का कारण बन सकती है, हमें भगवान से विमुख कर सकती। तो उस प्रकार से हमें हर समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तो हमें मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब बहुत अंतर्मुख होने की जरूरत है। इजोली ने हमारे गुरु महाराज जी कह रहे थे लोकनाथ स्वामी महाराज कि लोग चांद पे जा रहे हैं ना, दूसरे ग्रहों पे जाने का प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहा था मैं, तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि चांद पे तो नहीं जा पा रहे लेकिन दूसरे ग्रहों पे जाने का प्रयास कर रहे हैं अभी। तो अलग अलग लोग, साइंटिस्ट लोग जो है तो अलग अलग ग्रहों पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाराज जी बोल रहे हैं लेकिन लोग चांद पे जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कभी अपने अंदर हृदय में जहाँ पे परमात्मा खड़े है, साक्षात भगवान खड़े है, उसके पास देखने के लिए लोगों को समय नहीं है, तो इस प्रकार से लोग बहिर्मुख ज्यादा होते, तो हमें सदैव अंतर्मुख होने का कभी प्रयास करना चाहिए। तो यहां पे शिव जी बता रहे कि जो ये क्रोध है इसको हम रोक नहीं पाते, तो ये जो क्रोध है ये कहां से उत्पन्न होते, काम और जो क्रोध है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है मेरे लिए बेसिकली, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं कि काम और क्रोध जो है ये नरक के द्वार है, नरक की ओर हमें ले जाने वाले, और इनको हम सदैव धारण किए हुए हैं। मतलब मैं एक प्रभु जी के कुछ दिनों से कुछ क्लास सुनता हूँ, चेंज ऑफ हर्ट करके, चेंज ऑफ हर्ट रिट्रीट है उनकी, तो उसमें प्रभु जी बोलते हैं कि मतलब बहुत ये जो काम है क्रोध है ना, इतना डिफिकल्ट है कि इससे बाहर निकालना मतलब संभव ही नहीं है। तो किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल प्रभु जी देते हैं, अगर हमें चेक करना है, ट्रायल लेना है, तो 8 दिन कर आप कोई ऐसा एक विषय है इस पर काम करना स्टार्ट करो। जैसे 8 दिन हम मन में एक भी बार क्रोध आने नहीं देंगे, एक बार भी क्रोध आ गया तो आप फेल हो गए उस टेस्ट में। तो उस प्रकार से टेस्ट करेंगे तो पता चलता है ना कि कैसे हम किस स्तर पे। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, तो ये क्रोध का जो मूल है वो काम है, और ये काम कहाँ से आता है, तो ये काम आता है आसक्ति से। आसक्ति कहाँ से आती है, उसके पहले मूल जो है उसका वो है इंद्रिय विषय। तो 5 अलग अलग इंद्रिय विषय है, ये इंद्रिय विषय हमें क्रोध उत्पन्न करने के लिए, लोभ उत्पन्न करने के लिए, मोह उत्पन्न करने के लिए, मत्सर उत्पन्न करने के लिए, सभी की जड़ है ये इंद्रिय विषय। तो ये 5 इंद्रिय विषय क्या है, पहले आंखों से देखना, कोई भी चीज को हम देखते हैं तो उसमें आकर्षित हो जाते और उसमें फिर मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार से ये इंद्रिय विषय मुझे आनंद प्रदान करेगा। कोई भी सौंदर्यवान चीज है, जैसे एक युवक युवती के प्रति आकर्षित होता है, एक युवती युवक के प्रति आकर्षित होती, तो इस प्रकार से ये आंखें जो है हमारी तुरंत हमें वो विषय में आसक्त कर देगी और भगवान से तुरंत हमें विमुक्त कर देगी, और हमारे अंदर फिर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब कुछ भर देगी तुरंत ही। तो हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज एक बार जुहू मंदिर में क्लास दे रहे थे, तो क्लास देते समय महाराज जी वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, माया के बारे में वर्णन चल रहा था, किस प्रकार से माया भगवान की बहुत शक्तिशाली अस्त्र है जिससे कोई बच नहीं सकता है। तो तुरंत उसके 10-15 मिनट सब वक्त एकदम ध्यान से सुन रहे थे, और वहाँ पे एक जो नटी है वो नटी पूरे अपने परेड के साथ रोजू परेड के साथ आगे पीछे 2-3 वो स्त्रियाँ है ना, उसका जो सिक्योरिटी है उसके साथ टाक टुक चल रहे ऐसे। तो जैसे वो भगवान के सामने आ जाती है तो सब लोगों का ध्यान, अरे कौन आ गया, तो सब लोग उधर देखने लगते। तो उस समय महाराज जी बोलते यही माया है। तो उस प्रकार से है, मतलब हमारा मन जिस समय भटक गया भगवान से वो यह हमारे लिए मतलब माया है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन भगवान के चरणों का हम शरणागत होते हैं तो निश्चित ये माया को भी हम तर सकते। तो ये भगवान की बहुत बहुत ही हमारे ऊपर ये कृपा है। तो दूसरा इंद्रिय विषय है कान, कोई भी चीज़ सुनते हैं तो वो सुनने के लिए, बार बार वही चीज़ सुनने के लिए हम आकर्षित होते रहते, मटेरियल कुछ म्यूजिक है कुछ आवाज़ें हैं जो हमें आनंद प्रदान कर सकते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है। कुछ स्पर्श है, स्पर्श से हम ये कब मुझे ये स्पर्श करने से अच्छा महसूस होगा, तो ऐसा भी हम ये इंद्रिय विषयों से प्रयास करते हैं स्पर्श करके आनंद लेने का। फिर और कौन सा विषय रह गया, सूंघना है ना, सूंघ के अलग अलग हम सुगंध लेके प्रयास करते हैं। तो भगवान के हमें हर दिन यहाँ पे सुबह भगवान के फूल मिलते हैं, है ना, तो ये फूल सूंघ के एक्चुअली हम ये इंद्रिय विषयों को तृप्त कर सकते हैं। कानों को भगवान की कथा सुन के, भगवान का कीर्तन सुन के तृप्त कर सकते हैं। आँखों को भगवान का दर्शन लेके तृप्त कर सकते, नहीं तो ये कभी भी तृप्त होने वाली चीज नहीं है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ये इंद्रिय विषय है, जितना हम देखेंगे हमको उतना उलझाते रहेंगे, जैसे अग्नि में घी डालेंगे तो और बढ़ता रहेगा, कभी कम नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार ये हम इंद्रिय विषयों के पीछे जितना भी भागते रहेंगे तो उतने ही हमारे जो इंद्रिय विषय है, हमारे इंद्रिय है उसमें आसक्त हो जाएंगे, और ये आसक्त होने के कारण फिर हमारे मन में कामनाएं, अलग अलग इच्छाएं उत्पन्न होगी, और ये इच्छाएं अगर तृप्त नहीं होगी तो फिर हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न होगा। तो अगले के श्लोक में, अगले श्लोक में शिव जी बताते हैं कि ये जो क्रोध है ये हमारे बहुत बड़े शत्रु है। तो मैं बच्चों को, कल भी मैं एक स्कूल में गया था तो वहां पे मैं बोला बच्चों, अरे क्लास में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो सब बच्चों ने एक बच्चे का नाम लिया जो सबका दोस्त था, ये हमारा सबका अच्छा दोस्त है। मैं बोला अरे वेरी गुड, सब हर समय हमें हेल्प करता है। अब मैं बोला कि ठीक है, अभी आप क्लास का आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो एक बहुत ही नटखट बच्चा था, तो बोले ये सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। तो बहुत सारे बच्चों का वो शत्रु था। मैं बोला ठीक है, अभी आप मुझे बताओ ये क्लास में शत्रु भी है और मित्र भी है, ऐसा कोई बच्चा बताओ। तो बच्चों, मुझे ज्यादातर बच्चे बोलते ऐसा तो कोई बच्चा नहीं, शत्रु भी है मित्र है एट द सेम टाइम, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन वो क्लास में कल मैं बोला तो बोले हाँ एक बच्चा है, ये हमारा शत्रु भी, कभी कभी झगड़ा करता है, कभी कभी हमें हेल्प भी करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मन है ना, हमारी इंद्रिय है, ये हमारे कभी मित्र होते कभी शत्रु होते। लेकिन जब अगर हम उसको पहचान पाएंगे, ये हमारे शत्रु है, कब हमारा ये शत्रु है कब मित्र है, तो एक प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि अगर हम ये शत्रु को पहचान पाए तो उसका 50% एनर्जी जो है वो तुरंत लॉस हो जाता। जैसे कोई टेररिस्ट मुझे वो खंबे के पीछे से मारने आएगा, मेरे को पता है वो उधर है, तो उसके मन में थोड़ा भय रहता है, अरे इसको पता है ये भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता। तो पहले तो हमें पता करना है, मुझे अभी तक पता ही नहीं चला क्रोध मेरा शत्रु है, तो मैं उसको मतलब वो मुझको बहुत मतलब पूरा विवश कर देगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे मार के रखेगा वो। लेकिन अगर मुझे पता चलेगा तो फिर मैं है ना उसको, उससे मेरा संरक्षण कर सकता, कहीं छुप सकता हूँ, हेल्प मांग सकता हूँ, ये साइड से आ रहा है तो कहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती है ना। तो प्रभु, एक प्रभु जी के क्लास में मैं ऐसे सुन रहा था कि प्रभु जी बोलते हैं कि हमें जब भी हमें ऐसा कुछ अनुभव होता है, दुविधा में हम फंस जाते हैं, तो तुरंत हमें उस समय भगवान को पुकारना चाहिए, जोर से भी पुकार सकते। तो हमारे नागपुर के मेरे एक मित्र है, वो तुरंत ऐसा कुछ हुआ कि तुरंत बोलेंगे प्रभुपाद, मतलब मन में कुछ आ गया तो तुरंत, क्रोध आ गया तो बोलेंगे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद बोलेंगे तो वो 50% गुस्सा तो भी ढिशू हो जाएगा। तो वो उनका खुद का अनुभव है। तो जैसे भगवान को पुकारते, क्योंकि वो सत्यता भी है, जैसे मैं जप में भी कुछ कार्ड रख के जप करने का भी कुछ दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, तो जैसे अलग अलग आचार्य को स्मरण होता है, आंखों के सामने आती है, तो हमारी ऊर्जा और द्विगुणित हो जाती, क्योंकि जैसे प्रभुपाद को स्मरण करेंगे तो तुरंत प्रभुपाद की 1% कृपा हमारे ऊपर आकर्षित होगी, तुरंत प्रभुपाद 1% कृपा, मतलब प्रभुपाद का स्मरण होते चित्त में प्रभुपाद का रूप आते। प्रभु जी कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी को कोई व्यक्ति बस स्मरण करेगा तो तुरंत उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा, सिर्फ माधवेंद्रपुरी का स्मरण होते। तो उस प्रकार से हमारे पास जो गौरांग दर्शन प्रभु ने बताया कि ये एक्सेस दिया गया है, बाहर के लोगों को ये चीज पता नहीं है, तो हमें ये एक्सेस प्रदान किया गया तो हमें इसका बेनिफिट लेना चाहिए, लेकिन हम लेते नहीं। तो ये बहुत बड़ा मतलब मेरा तो दुर्भाग्य है, मैं कितने साल से देख रहा हूँ, मतलब कितने सारे भक्त है यहाँ पे, कितने शास्त्र में निपुण है, लेकिन हम उनका फायदा नहीं लेते, उनसे बातचीत करने में या फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछने में, मतलब ऐसे पूछेंगे परिवार के बारे में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रभु जी भी फिर वो खुद मन से तो हमें कभी बताएंगे नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो हम जब तक उनके पास जाके पूछेंगे नहीं कि मेरे अंदर ये चल रहा है, क्रोध आ रहा है, ये क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है, वो बराबर वो बताएंगे, ऐसे पॉइंट बताएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते, और हमें लगता है अरे क्यों पूछा नहीं मैंने। तो पूछने का कारण हमारे अंदर का फॉल्स ईगो जो है ना, तो मिथ्या अहंकार। तो शिव जी जो है ये मिथ्या अहंकार को नष्ट करने वाले। तो जपा कार्ड में वो प्रार्थना में हर दिन पढ़ता हूँ, तो हे गोपेश्वर महादेव, कृपा करके मेरे मिथ्या अहंकार को नष्ट कीजिए, और मुझे भगवान का जो ये दिव्य हरिनाम है वो सतत लेने के लिए प्रेरणा दीजिए। तो तुरंत शिव जी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए तैयार है, वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन हम आश्रय नहीं लेते। तो यही समस्या है। तो मैं सभी वैष्णव के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि भक्ति के लिए या भगवान के चरणों में पूरी तरह आसक्त होने के लिए कुछ योग्यता तो नहीं है, लेकिन भगवान की, प्रभुपाद की, गुरु महाराज की इतनी विशेष अनुकंपा है, इतने कोटि अपराध होने के बाद भी हमें वो भक्ति में पकड़ के रखे है, टिकाए रखे है, तो उनके चरणों में पूरी तरह शरणागत होने के लिए आशीर्वाद दीजिए, ये एक प्रार्थना करूंगा। और दो तीन कुछ निर्भरता एक ज्ञान पत्र है, निर्भरता किस प्रकार से हमें भगवान पे निर्भर रहना चाहिए उसके बारे में, तो ये कुछ दो तीन भागवतम के श्लोक में से है, मैं वो बस पढ़ता हूँ। तो जब हम कृष्ण पर निर्भर होते हैं तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, और जब तक हम यह सोचते हैं कि हम करता है तो हम चिंता में ही रहते हैं। गोत्रत्वे वर्णम, शरणागति का यह मुख्य अंग है, सदा इस बात का ज्ञान रहना कि कृष्ण प्रत्येक क्षण हमारी देखरेख कर रहे हैं, हर समय स्थान परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है, आप स्वतंत्र नहीं है अपितु पूर्ण रूप से आश्रित है। यह निष्कपट, यह निपट अज्ञान ही है जिसके कारण हम अपने आप को, स्वयं को स्वतंत्र समझते हैं। तो हम बहुत ही अल्प स्वतंत्रता जीव को है, लेकिन फिर भी ये अल्प स्वतंत्रता में जीव खुद को पूरी तरह स्वतंत्र समझता है, मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार इच्छाएं करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु इन इच्छाओं की पूर्ति परम पुरुषोत्तम भगवान के ही द्वारा की जाती है। हर कोई सोचने और इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु इसकी इच्छाओं का पूरा होना भगवान की इच्छा पर ही निर्भर होता है। इस नियम के आधार पर कहा जाता है कि अपनी सोच होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। जब तक भगवान उसको सैंक्शन करते नहीं तब तक हमारी कोई भी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, फिर भगवत गीता में भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिर संगी रहते हैं, फलता वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझाते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है, भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो पहले हमें योग्य बनना पड़ेगा। यदि हम अपने भौतिक अस्तित्व के प्रत्येक लेन देन में परम पुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ अच्छे से और हमारे हृदय के संतुष्टि के अनुसार होता रहेगा। दूसरे शब्दों में हमें हर परिस्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए और पूर्णता उनके निर्णय पर ही निर्भय रहना चाहिए। अपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल, अतः सभी इच्छाओं की पूर्ति का भार परम पुरुषोत्तम भगवान को ही सौंप दिया जाना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ हल है। फिर श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद में वृत्रासुर भी कहते हैं कि हे इंद्र, मूल उपभोक्ता परम पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य सदैव विजयी होने के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता, वही सृजन पालन पोषण और संहार के कारण है और उन्हें सब कुछ पता होता है। उन पर आश्रित होने और भौतिक शरीर को स्वीकार करने के लिए बाध्य उनके युद्धरत सैनिक कभी विजयी होते हैं और कभी पराजय का स्वाद चखते। तो हमें सदैव भगवान पे कैसे आश्रित होना है, ये वृत्रासुर इंद्र को शिक्षा प्रदान करते। तो इस ब्रह्मांड में प्रत्येक ग्रह पर निवास करने वाली सभी जीवात्माएं, यहाँ तक कि उन ग्रहों के आदिष्टाती देवता भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन होते। यहाँ पे हम देखते हैं कि इलाव्रत जो व्रत है, शिव जी भी जो है बोल रहे कि मैं भी सदैव भगवान पे ही आश्रित रहता हूँ। हालांकि देखते हैं कि 10 अब्ज स्त्रियां उनकी सेवा कर रही, तो फिर भी शिव जी को यह सदैव ज्ञात रहता है कि मैं भगवान पे ही आश्रित हूँ। फिर श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में 12वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि हे राजा इंद्र, जिस प्रकार किसी स्त्री की भांति दिखने वाली कठपुतली या घास और पत्तों से बना हुआ कोई पशु स्वेच्छा से हिल डुल या नृत्य नहीं कर सकते अपितु वे पूर्ण रूप से उन्हें चला रहे व्यक्ति पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार हम सभी परम नियंता परम पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा के अनुसार ही नृत्य करते रहते, कोई भी स्वतंत्र नहीं होता। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सभी वैष्णव के चरणों में यही प्रार्थना है कि जो बोला हो, मतलब जीवन में उतार तो नहीं पाया, लेकिन वो उतारने के लिए सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की याचना करता हूँ। और मुझे कुछ बोलने के लिए जो यहाँ पे संधि प्रदान की गई, तो इसके लिए सौभाग्य हो, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो मुझे महसूस हुआ तो हम कुछ तो उस पर विचार करने लगते, मैं कैसे बोल सकता हूँ ऐसे, तो इसके लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।